भगवद गीता एक सुप्रसिद्ध शास्त्र है, परंतु एक प्रश्न हो सकता है, क्यों हम गीता का पाठ करेंगे? उससे क्या फायदा होगा, क्या आवश्यकता है? यही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर श्री गीता महात्म्य में प्राप्त होता है। गीता महात्म्य, कही गीता महात्म्य है, एक प्रसिद्ध गीता महात्म्य है जो श्रील प्रभुपाद उनकी भगवद गीता यथारूप की टीका की भूमिका में उद्धार किए। ये गीता महात्म्य के लेखक कौन है वो अनिश्चित है। कई लोग कहते हैं कि श्री आदि शंकराचार्य की रचना है, परंतु अनिश्चित है। ये गीता महात्म्य में खाली 7 श्लोक है और 7 श्लोक में भगवद गीता का महत्व बहुत सुंदर रूप से वर्णित है। प्रथम श्लोक, गीता शास्त्र मिदं पुण्यम यः पठेत् प्रायतः पुमान् विष्णु पदम् अवाप्नोति भयशोक आदि वार्जितः। गीता शास्त्र, पहला विचार है कि ये शास्त्र है, ये एक साधारण किताब नहीं है, यही शास्त्र है, प्रमाणिक है। शास्त्र से हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा दुर्लभ मानव जन्म सफल हो सकते हैं। और यही गीता शास्त्र पुण्य है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, इदम शब्द का अर्थ यही, पुण्य शास्त्र, सब शास्त्र पुण्य है। और शास्त्र का पाठ करने से हम पुण्यवान हो जाते हैं, परंतु विशेषकर यही शास्त्र पुण्यमय कहा जाते हैं, क्योंकि भगवद गीता एक महान विशेष पुण्यमय शास्त्र है। और या पठेत प्रायथा पुमान, वो व्यक्ति जो नियमित रूप से गीता का पाठ करते हैं, क्या फल मिलते हैं वो व्यक्ति को? यही फल, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु भगवान विष्णु का धाम जाते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा कृष्ण का जन्म और कर्म कलापों पूर्णतया दिव्य है, असाधारण है, अलौकिक, त्रिगुणातीत है, वो व्यक्ति शरीर त्याग करने का समय अलग शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, मेरे धाम आते, मेरे पास आते हैं। तो वो ज्ञान कृष्ण के बारे में गीता में उपलब्ध है। और वो धाम, क्यों हम वो धाम जाएंगे और उससे क्या फायदा होगा? वो धाम भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, भय शोक आदि वर्जित, वहाँ पर भय, भीति, शोक, दुख, कष्ट इत्यादि नहीं है। वैकुंठ धाम पूर्ण आनंदमय है, जैसे भगवान आनंदमय है, सच्चिद आनंदमय भगवान उनका धाम है, सच्चिद आनंदमय और जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से नियमित रूप से भगवद गीता यथारूप पाठ करते हैं, पूर्ण विश्वास से भगवान का धाम जाते हैं। एक और लाभ है भगवद गीता पाठ करने से, बहुत लाभ है। धीरे धीरे गीता महात्म्य में सब लाभ, सब फल वर्णित हो जाएगा। द्वितीय श्लोक, गीता ध्यान शील से प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता ध्यान शील से, तो प्रथम श्लोक में कहा गया है यह पठेत प्रायतः पुमान, और यही श्लोक में गीता ध्यान शील से, तो प्राय एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति गीता अध्ययन में रत रहते हैं, उसमें आनंद लेते हैं और नियमित रूप करते हैं, प्राणायाम परस्य च, और प्राणायाम भी करते हैं। यही कलि युग में प्राणायाम से आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि अच्छी तरह प्राणायाम योग व्यायाम करना बहुत कठिन है कलि युग में। इसलिए प्राणायाम नहीं करके यही कलि युग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए। तो गीता का पाठ करना और भगवान का नाम लेना, ये दोनों से यही फल होते हैं। हम किसी प्रकार का पाप का फल से दूषित नहीं होंगे। सब पाप जो हमें किए चुके हैं पूर्व जन्मों में, वो पूरा साफ हो जाते हैं। वो एक फल है, वो गीता पाठ करना और भगवान का नाम लेना का प्राथमिक फल है, वो सर्वश्रेष्ठ फल नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। परंतु हम जो भौतिक संसार में है, हम जन्म जन्मांतर विभिन्न प्रकार का कष्ट भोग करते हैं हमारा पाप कर्म का फल से। परंतु गीता अध्ययन करने से और गीता में वो सब उपदेश जो है वो सब पालन करने से, हम यही सहज उपाय से सभी प्रकार का पाप से मुक्त हो सकते हैं। जैसे गीता का अन्वय भगवान कृष्ण का चरम उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि और सभी प्रकार का कल्पित धर्म, नकली धर्म, तथाकथित धर्म, अपधर्म, उपधर्म, छल धर्म इत्यादि पूरी तरह छोड़ के एक काम करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, मेरे चरण में शरणागत हो जाओ, मुझ में शरण ले लो। शरणागत भक्तों को भगवान यही वर देते हैं, तो सब पाप जो किया है वो सभी पापों का फल से मैं मुक्त कर देता हूँ। मा शुचा, चिंता मत करो, भगवान कृष्ण कर सकते हैं और करते हैं उनके शरणागत भक्तों के लिए। और गीता में मुख्य संदेश यही है, कृष्ण का शरणागत भक्त बनना। तीसरा श्लोक, मल निर्मोचनं पुंसाम जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। प्रतिदिन हम जल से स्नान करते हैं, आशा है कि सब लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। सभ्य व्यक्तियों के लिए एक आवश्यक अभ्यास है, और जल का स्नान से शारीरिक स्वच्छता होती है, पसीना, दुर्गंध और भिन्न भिन्न प्रकार का मल से हम मुक्त होते हैं जल से स्नान करना। परंतु केवल एक बार यदि हम गीतामृत में स्नान करते हैं, ये रूपक जैसे है, हम संसार का मल से विमुक्त होते हैं, संसारिक मल नष्ट हो जाते हैं। संसार मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि संसारिक दूषण सब नष्ट हो जाते हैं गीतामृत में स्नान करने से। अर्थात हमारी पूरी चेतना गीतामृत, गीता का संदेश में पूरा तन्मय होना चाहिए। तो कैसे गीता पाठ करने चाहिए? चतुर्थ श्लोक में गीता सुगीता कर्तव्य किमन्याय शास्त्र विस्तराय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। हमारा कर्तव्य है गीता पाठ करना सुगीत से, अर्थात सुंदर स्वर में, पूरा ध्यान से, भक्तिपूर्ण हृदय से, सुश्रद्धावान होने से। और यदि हम इस प्रकार गीता पाठ करते हैं, किम अन्याय शास्त्र विस्तराय, शास्त्र कितने हैं? असंख्य है। क्रिश्चियन धर्म में बाइबल है एक शास्त्र, और इस्लाम में कुरान, और सनातन धर्म में असंख्य शास्त्र है। विस्तार रूप से पारमार्थिक ज्ञान शास्त्र में वर्णित है, परंतु सब शास्त्र का सारांश भगवद गीता में है। इसलिए किम अन्याय शास्त्र विस्तराय, यदि हम ध्यानपूर्वक गीता पाठ करते हैं तो भिन्न भिन्न शास्त्र का विस्तार अर्थ समझना की आवश्यकता नहीं है, गीता संपूर्ण ही है। या स्वयं पद्मनाभस्य, क्यों हम गीता को इतना महत्व देते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं पद्मनाभ कृष्ण स्वयं भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को परिवेशन किए हैं, और अर्जुन का माध्यम से हम सभी बद्ध जीवों को। पंचम श्लोक भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्ता, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद् विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भगवद गीता महाभारत में आते हैं, महाभारत का अंश है। महाभारत एक विशाल शास्त्र है, और भगवद गीता में केवल 700 श्लोक है, परंतु महाभारत का अमृत का सारांश है ये भगवद गीता। और पुनः ये पुनः गीता महात्म्य के लेखक कहते हैं विष्णु वक्त्राद् विनिश्रितम्, जोर देने से दूसरी बात कहते हैं कि ये भगवद गीता भगवान स्वयं का श्रीमुख से विनिश्रित हुई, इसलिए भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा का जल पीने से हम पवित्र होते हैं, और ये गीता जो गंगा जैसे है, ये जल, ये अमृत, गीतामृत पीने से क्या होते हैं, पुनर्जन्म नहीं होगा। गंगा भगवान का श्रीचरण से आते हैं, और भगवद गीता भगवान का श्रीमुख से आते हैं। गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, परंतु गंगा का महत्व इतना महान होते हुए भी गीता का महत्व और भी अधिक है। गंगा स्नान करने के लिए, गंगा का जल पीने के लिए गंगा के पास जाना पड़ेगा या वहाँ से बोतल में लाना पड़ेगा, परंतु किसी भी समय में, किसी भी स्थान में, किसी भी अवस्था में हम भगवद गीता का ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। श्लोक 6, सर्वो पनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ये एक उपमा है। वेद शास्त्र में ज्ञान खंड है उपनिषद शास्त्र, जिसमें वो सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान संकलित है, परंतु उपनिषद की भाषा बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म विचार है उपनिषद शास्त्र में। यही श्लोक में कहते हैं कि सभी उपनिषद एक गाय जैसे है। वो गाय से क्या प्राप्त होते हैं? दूध। दूध निकालने के लिए दूध निकालने वाले होने चाहिए। तो सर्वो उपनिषद और गावो, गीता एक गाय जैसे है, और वो गाय सब उपनिषद का उपदेश है। और दूध दोहक है, दुग्धा गोपाल नंदन, कृष्ण का नाम है गोपाल, और वे गोपाल नंदन भी है क्योंकि उनके पिताजी नंद बाबा वे भी गोपाल, तो गोपाल नंदन कृष्ण गोदोहन करते हैं। और दूध निकालने का समय गाय से, उपास में गाय का वत्स रखना चाहिए, और प्रेम से, स्नेहल से वो गाय और भी दूध देंगे और बहुत प्रसन्नता से देंगे। तो वो वत्स, ये उपमा में वत्स है पार्थ अर्जुन, और वो दूध कौन पीते हैं? सुधीर, जिनके मन धीर है। धीर कौन है? गीता में कृष्ण कहते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मोह्यति। जन्म लेने के बाद हम कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु प्राप्त होती है, और ये सब दैहिक परिणाम में धीर, जिनकी बुद्धि परम सत्य पर स्थित है, वो धीर व्यक्ति वो शरीर का परिवर्तन और मृत्यु से विचलित नहीं होते, सुधीर। कौन है योग्य भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए? सुधीर। और यदि हम सुधीर नहीं है तो गीता का दूध पीने से हम सुधीर बन जाएंगे। वो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत, महान अमृत जो गीता है वो सर्वोपनिषद का गाय का दूध है भगवद गीता। अर्थात सब ज्ञान जो वेद शास्त्र में है उसका उपसंहार, उसका सारांश बहुत मधुर रूप में संकलित है भगवद गीता में। और वो ज्ञान जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन है, हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं भगवद गीता का माध्यम से। और अंतिम श्लोक, सप्तम श्लोक, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्थस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इसलिए बहुत बहुत शास्त्र लाना, तर्क करना, झगड़ा करना शास्त्र के ऊपर आवश्यक नहीं है। एक शास्त्र होने चाहिए, देवी की पुत्र गीता, भगवद गीता। और एक देव शिव है, ब्रह्मा है, चंद्र है, इंद्र है, कार्तिकेय है, और सब के देव देवाति देव है देवी की पुत्र श्री कृष्ण। इसलिए एक मंत्र होने चाहिए। बहुत मंत्र है वेद शास्त्र में, परंतु एक मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का नाम। कितने नाम है भगवान? बहुत है, कृष्णा, नारायण, विष्णु, हरि, मधुसूदन इत्यादि। और हम कृष्ण नाम लेने से सब मंत्र का उच्चारण करने का फल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और सब मानव के लिए एक कर्म होना चाहिए, वो देव वो कृष्ण की सेवा करना। यही गीता महात्म्य है, सात श्लोक में संपूर्ण होते हैं। आप भगवद गीता यथारूप पाठ करिए, आपका परम लाभ होगा और दूसरों को भी ये भगवद गीता ज्ञान परिवेशन करें। भगवद गीता पुस्तक आप दूसरों को दे सकते हैं। इस प्रकार भगवद गीता भगवान की कृपा से आपका जीवन पूरा धन्य हो जाएगा। अच्छा।